राधा जी अपना सीन करते थे और पैर को मंजरी मिले उनकी मूवी में रखे। हम लोग इसका विशेष इसके इससे वृंदावन से संबंधित यत्नों का संग मिलेगा, ऐसी भक्ति को सुनने का सौभाग्य होगा। इसमें धन संपत्ति क्या की आ जाएगी और इसमें कुछ कष्ट भी आएगी। लंगे जी कह रहे थे उनके बड़े भाई कह रहे थे, एक आदमी है वो कहते हैं जैसे तुमने इतना ये दान किया, हमारा ये मंदिर नहीं बनाया तो तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए हम तुमको अभिषेक। बड़े भाई कह रहे थे क्या महत्व नहीं देखो ये साधु होता कि ये साधु है कि नहीं है। और उनको मैं जानता हूँ,
मैं ये कह रहे हैं
हाँ कि जो कह रहे हैं कि हम तुमको ऐसा विषम पात कर रहे हैं उनको नहीं जानता।
उनकी उम्र हो गई है करीब करीब 94 वर्ष, उनके पास में कोई व्यक्ति नहीं है। मैं गया तो हमसे बोले कि भाई उनसे बहुत मत कहना बोले तुम्हारा कि जी चाहते हैं कि मेरे पास में ठाकुर जी हैं एक विशाल
बने 94 साल के बने
और कोई शिष्य भाई पिताजी आप मरने पर उतारू हैं हरिनाम कर रहे तभी वो भी आप करना नहीं चाहते क्या करेंगे। एक शिष्य नहीं जो देखेगा सुनेगा अभी इनकी सेवा करने के लिए आपको दीक्षा करने के लिए जाना पड़ता है। अपनी मती मारी गई है ना क्या हो गया है या क्या हमारी समझ में नहीं आता। अब बैठ करके हरिनाम भाव सेवा नहीं कर सकते, मंदिर बनाएंगे कौन देखेगा इसके बाद में क्या करेंगे, चार पांच शिष्य बनाया तो वो उनका कुछ लेकर के चले क्या तो वो उसे डायरेक्ट उन्होंने ये से इनसे कह दीजिए कि हमको कुछ पहले मैं नहीं कहता आपसे कहता हूँ जैसे ये सब अच्छा है आप भक्ति जानिए। वैसे हमारे उम्र से और सब प्रकार से हमारे लिए हैं मैंने उनको समझा और वही जब मैंने नहीं कहा तो वो खुद गए और बोले जैसे हमारा ये काम करो नहीं तो हम कभी सब बात करते। इसको क्या दिन कहेंगे भक्ति कहेंगे ना क्या करेंगे। अच्छा अब वो यदि कुछ जो हरिनाम तो किया है तो कुछ थोड़ा सा जैसा ही अच्छा बुरा किया है भक्ति जी की सेवा भी करेंगे और वो यदि कहिए तुम्हारा सर्वन तो क्या होगा। ये कर्म मार्ग ऐसा है क्या खटम बटम कर रहा
है लाइट दे
दे। भक्ति का आभास इसमें है तो बहुत बड़ी चीज संसार के किंतु भक्ति का जो ब्रह्ममयी भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है इसके नहीं जानने से ऐसा है ठीक। हमने उनको चाह दिया जैसे ठीक है किंतु कभी जो हम लोगों की महाप्रभु जी जिस चीज को देने के लिए आए हैं ये चीज कभी भूल ना जाए। किंतु होगा क्या होगा मान लीजिए जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं सब लगा दिया उसी उनके प्रति अटैचमेंट होगा कि नहीं
होगा।
अटैचमेंट होने से क्या होगा इधर में चीज जाएगी वो चीज हेम्पर्ड हो जाएगी
तो शायद उनके मन में ऐसा ही वैसा नहीं
है कुछ कुछ ना कुछ
ठंडा। और इस भक्ति के विषय में कि हम किस तरीके से सेवा करेंगे ये सोच रहे हैं और दूसरी तरफ हम सेवा कर रहे हैं हम जो आरती कर रहे हैं
सेवा आपकी सेवा आपसे कुछ उन्नत अधिकार की सेवा नारद जी की सेवा उद्धव जी की सेवा सुवर्ण सिद्धाम की सभा उनकी सेवा यशोदा मैया की नंद बाबा की कृष्ण की सेवा और गोपियों की सेवा और श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के पति से इनमें कोई तारतम्य है ना, एक ही बराबर सब है, दीपा पुत्र है।
सीढ़ी बनाने की मुश्किल है, किस तरीके की
ये महाराज बोले वही सीढ़ी है
ना, हमारी अगर बीच में जोड़ेंगे तो पता नहीं वो सीढ़ी हमारी तो
सीढ़ी से नीचे है। अभी तो हम लोगों के साथ में रहने से ये तात्पर्य क्या ध्यान आकर के तब किसी विशेष के प्रति उद्देश्य को हमारा ठीक होगा, उद्देश्य ही नहीं हमारी भक्ति का, कोई वो भक्ति अभी भक्ति नहीं है, भक्ति के लिए कोई स्त्री बड़े चाहिए। हाँ ये चीज हमको साधने चिंतित भेजा, साधन में जैसा हम चिंता और जैसी हमारी धारणा हो ये सब यहीं पर ठीक हो जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहाँ क्या चाहते हैं, इसके बाद में तब हम प्रयास ऐसा करेंगे। जब हमारा उद्देश्य ही नहीं स्थिर हुआ कि हमको क्या चाहिए
प्रयास करें
तो कैसा हम साधन करें, इसलिए उद्देश्य ठीक हो जाएगा। सुनते 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 इसको कहते हैं परिष्कृति। परिष्कृति माने होता है
शोधन,
उपास्य परिष्कृति, उपासना परिष्कृति, उपासक परिष्कृति, तीन चीज है। उपास्य, उपास्य कौन है क्या है उसकी क्या विशेष, कृष्ण हमारे उपास्य है ये अभी नहीं हुआ, इसलिए तो हुआ जैसे देवता देवी हमारे उपास्य नहीं है, हमारे उपास्य राम नहीं है, हमारे उपास्य द्वारका देश नहीं है, हमारे उपास्य यशोदा जी के लाडले जो कृष्ण है वो नहीं है, अब तो कहते वहां तक जाएगा तब ये उपास्य की परिस्थिति हुई। अभी तो हम लोग इसमें है कि ये देवता गणेश जी की उपासना करूं कि नहीं, उनकी उपासना करी थी, सरस्वती जी की करी, दुर्गा जी का करी थी, हमारे घर में दुर्गा जी बहुत दिनों तक पूजा हो रही थी, अब इनकी पूजा भी करो करें, अभी कहाँ अभी है, अभी कृष्ण में ही वहां पर अभी देखे कभी अभी तक नहीं हुआ। अभी यदि कृष्ण को बच्चा मान करके यशोदा जी के गोदी में खिलते हुए देखते हैं और उधर में थोड़ा सा लोभ हो रहा है, ये तो हुआ उपास्य संस्कृति, उपास्य संस्कृति मान उपास्य का अभी विचार अभी भी नहीं बतलाया मैंने, और फिर बहुत कुछ जानने की, इसके बाद में उपासक की परिस्थिति, जो हम साधक अभी क्या चाहिए, अभी हमको संसार की कोई चीज चाहिए न मुक्ति संसार से चाहिए न क्या चीज चाहिए, तुम है क्या, तुम ये शरीर है मन है बुद्धि है न आत्मा है न परमात्मा खुद बन गया क्या है, रियल कॉन्सेप्शन होनी चाहिए, ये मैं कौन हूँ और वो कौन, तुम ये तो रहे
बहुत तुम आएगा
अभी भी हमने जो बतलाया कृष्ण के लिए अभी भी साथ नहीं है, एक में स्थिरता है, तो भी यदि सर्वोच्च भक्तों के साथ में रहेंगे जो ऐसा साधन है तब वो ही रहेगा। अभी हम कुछ संसारिक चीजें भी चाहते हैं, बिना संसारिक चीजें चलेगा है। और उपासना को भी अभी छोड़ा नहीं था उसने भी, अब इस स्थिति में हम क्या करें, इसको लेकर के चलना पड़ेगा ना, तो इसको लेकर के चल रहे हैं तो इसके लिए भी तो समय देना पड़ेगा, यदि छोड़ते हैं तो जीवन का निर्वाह काफी प्रश्न हो जाता है, और अभी छोड़ते नहीं है तो अभी भजन होना भी बड़ा बारीक, वैसा निरपेक्ष जो भजन है वो ही होना बड़ा बारीक कठिन है, चित्त इस तरह से विचार करते हुए हम अब ये ठीक करेंगे। ये जैसे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी कैसा जीवन, इतना सा मट्ठा लेते थे घर में, कोई चीज की जरूरत नहीं, न कपड़े की जरूरत है, न लंगोटी पहन लिया, भगवान के पास उनको ठंड भी नहीं लगती थी, गर्मी से नहीं, एक पंखे की भी जरूरत नहीं, शादी हो जाए तो गड़बड़ का भी टी वी और क्या क्या हो जाए, खाने के बिना दलकने लग जाए तो वो भी एक स्थिति आए तब तो ऐसा करेंगे। और यदि प्रिटेंड केवल किया है गहाना बनाए जैसे हम ऐसी स्थिति में चले तो एक दिन में मरेंगे, बहाना करने से ऐसा नहीं,
गहाना करने से सबक
धीरे धीरे धीरे, और हमारे उठने से नहीं होगा, वो भगवान और भक्तों की विशेष कृपा से वैसी होगी, वही भरेंगे सब शक्ति का संचार हमारे कर्म से। भक्ति स्वयं स्वरूपतः स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, भगवान जैसा और स्वप्रकाशक, तो वो कैसी उपासना होनी चाहिए रघुनाथ दास। अच्छा, रघुनाथ दास जी को एक साइड में लेकर के बैठा दी, सिंघानिया जी का सब एनर्जी उसमें लगा करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वहां के जितने बड़े बड़े लोग हैं राजा से मिले करके सब बड़े आकृष्ट उसके। अच्छा, उसकी सेवा का फल, इसकी सेवा का फल, ये नंद धर्म में बैठ करके हरिनाम करते हैं, अब दोनों का विचार करके देखे जैसे सेवा किसकी अधिक हो रही है, कौन ऊपर में जाएगा, इसको समझने वाला कौन, वो हीरा को समझने वाला पाठी होना चाहिए, और नहीं वो साधारण चीज को, साधारण व्यक्ति जिसको भक्ति की आइडिया नहीं है, इसलिए उनका ऐश्वर्यमय भक्ति है, तो ऐश्वर्यमय भक्ति से ऐश्वर्यमय भाव मिलेगा, ब्रज में प्रवेश होना पड़ा। मैंने उनको कहा आपको देखकर से मुझको बहुत डर लग रहा है कि हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, हमारा परिश्रम कहीं पैसा न चला जाए,
आपने तो बहुत ऊपर बोल दिया था, गाय के बछड़े पे इतना प्रेम हो गया कि ये बछड़ा ही ना बन जाए,
उसको यहाँ तक कर
दिया।
अभी संसार के आदमी ने कहीं ये क्या कह रहे हैं,
पर वो समझते हैं
शरीर की आवश्यकता तो बहुत कम है, सारी आवश्यकता मन की है, और मन की जो आवश्यकता है वो मन तो एक ही है, चाहे कृष्ण में लगा लो चाहे संसार में लगा लो, मतलब मिश्रित हो सकता है, चाहे कुछ संसार में लगा होगा कुछ कृष्ण में लगा होगा, मगर जब कृष्ण में मन लगता है और वो जो उनकी चिंता होती है तो वो मन को अपनी तरह मगर खींच लेते हैं, तो संसार तो सोचता ही।
जैसे महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु स्वयं उदाहरण दिया, कोई एक किशोरी शादी हो गई, किंतु शादी के पहले से किशोर से उसका दिन लग गया, प्रेम हो गया, लोग प्रेम हो गया, अब वो उसको छोड़कर के रहना नहीं चाहते, किंतु लोक मर्यादा के सामने वो किसी को प्रकट नहीं कर सकता, विवाह हो जाने के बाद भी उसका दिल चाहता है जब किंतु किसी को व्यक्त नहीं करती, न पिता माता से, न सास ससुर से, न घर वालों से, न अपनी सहेली से भी नहीं कर सकती है, सहेली कोई ऐसी हृदय वाली हो तो उसको वो चुपके से बतला सकती है और दूसरे को नहीं कर सकती, इसी को छिपाने के लिए वो मन ही मन में उससे मिलने की इच्छा कर रही है और शरीर से रोटी बना रही है, घर का काम कर रही है और काम कर रही है, ऑफिस में भी जाकर के जो काम कर रही है वो सभी पहले से अभी कर, किंतु मन की भी स्थिति है वो क्या है, तो शरीर का किया हुआ काम का महत्व अधिक है ना मन के काम किया का महत्व अधिक है, जैसे मन से वो सब समय कर रही है कि कब मिलूं, कब मिलूं, कब बात करूं, कब उसे कदे से मिल जाऊं, और शरीर से तो रोटी बनाना ये काम करना, उधर घर का काम करना, ये सब करना महत्व ऐसे नहीं होता, मन प्रबल है ना, मन की क्रिया बहुत अधिक होती है, इसलिए शरीर में जब तक हम बाध्य हैं तब तक ये शरीर के कार्य कार्यों को हम, इसलिए लोक मर्यादा के अपने लिए अपने ही करना, लोक मर्यादा के लिए लोक रक्षा करना, और जब
वैसे करते 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 मन जब और दृढ़ हो तो लोग ये जो लौकिक रीति और ये सब है छोड़ने की भी अपने आप वो छूटा सा हुआ। ऐसे ये भगवान की तरफ से भक्ति की तरफ से व्यवस्था हो गई अपने आप वो बाली में ये कर दिया। उदाहरण के लिए दिया गोपियां सब समय पूर्वराग में मिलने से पहले जो उनका सब समय उनकी चिंता करती थी। अब जिसमें बंसी की आवाज उनके कान में गई जो मर्यादा जहां का तहां सब कुछ हरा रहा अच्छा इसके बदले में प्रभु ने क्या किया जुग माया ने उनकी प्रतिमूर्ति वहां पर रख दी और घर वालों को कोई संदेह न हो घर का काम वो सब चलाती रहे कौन वो जो मूर्ति बनी हुई है जुग माया के तरफ वो करती रही और उनको मालूम है कि हमारी पत्नियां तो हमारे पास में है हमारा ये सब काम कर रही है इसलिए जब लौट करके आई तो उनके प्रति द्वेष हिंसा कुछ रही ये जुग माया का ऐसे करते वो करते हैं
आदेश रूप गोस्वामी ने भक्ति का शुद्ध स्वरूप जगत में प्रसार किया नहीं पढ़ रहा है और आगे आगे हारमोनियम पीछे कर रहे भक्ति तो पहले भी थी नित्य काल से भगवान ही भक्ति भी है भक्त लोग भी किंतु इस धारा को एक गोस्वामी के बाद में उन लोगों की धारा में रघुनाथ दास गोस्वामी थे और उनके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बीच में सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी दोनों का भी भक्ति प्रचार में बहुत योगदान है। उसके बाद में वो धारा नरोत्तम ठाकुर जी श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास जी इन तीनों के माध्यम से जगत में विकसित हुई। उसके बाद में आए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
अपना नाम भी नहीं बदला, यह कुछ भी नहीं बदला, और रूप गोस्वामी के विचारों को यथाजुक्त रूप में ठीक ठीक रूप में प्रकाश करने की उन्होंने चेष्टा की, सारा प्रयुक्त नए रूप में समाज के अनुकूल इसमें करीब करीब उन दोनों का अंतर रूप गोस्वामी और महाप्रभु जी के नेता करीब अढ़ाई वर्ष अढ़ाई सौ वर्ष का करीब 200-250 वर्ष का हो, तो परिस्थितियां बदलती हैं
क्योंकि भक्ति का भी प्यार जो होता है एक ही होता है, उसके बाहरी आचरणों में कुछ अंतर इधर उधर होगा, क्योंकि मूल जो विषय है भक्ति का वही ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के नाम में बलदेव विद्याभूषण जी आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आते हैं, हम लोगों के गुरु जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, उसी धारा को देने की चेष्टा करते, जिसका जैसा सौभाग्य होता है कोई कोई इसके बाहर बाहरी
ढांचे को आवरण को लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, उनका वही तक अधिकार होता है, वो भी ठीक ही है, आदि उसके भीतरी स्वरूप को समझ करके उसको करने की चेष्टा करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी
ऐसे करीब 2-2.5 वर्ष उन्होंने जो धारा वो थोड़ी सी दब रही थी ढक रही थी फिर से पुनर्जीवित कर दिया, उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, भागवत की उन्होंने व्याख्या लिखी है, गीता की टीका लिखी है, स्वतंत्र रूप में ये जितने रूप गोस्वामी के ग्रंथ हैं उनको सरल सहज भाषा में संस्कृत भाषा है किंतु सरल जिसको हम लोग भी समझे आप लोग नहीं समझे उस रूप में उन्होंने उस समय के लिए ये एकदम साधारण प्रचलित भाषा थी जैसा उन्होंने संस्कृत किया, किंतु अब वो भी नहीं चले, अब उसकी भी व्याख्या इत्यादि की जरूरत है, और सरल सहज सुबोध भाषा में विशेष करके उर्दू मिश्रित हिंदी ये सब में जिसको साधारण आदमी भी फॉलो कर सके इस रूप में इसकी जरूरत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक मार्ग पहले लिखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, भक्ति राज्य का एक वो आईन की पुस्तक है, उसमें सब परिभाषाएं जितनी है भक्ति की और श्रद्धा की भाव की स्नेह की कृष्ण की भक्ति का भक्त का ये सब चीजें उसमें उन्होंने विचार करते हैं, जो साधारण स्थिति से भी साधक किस प्रकार से उन्नत से उन्नत प्रजरस तक पहुंच सके इसके लिए उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकों के आकार के रूप में विशाल विशाल ग्रंथों का सार उसमें सागर को कागर में भर दिया, कागर में सागर ही भर दिया मैंने, इसमें भक्ति गोस्वामी सिंधु का एक श्लोक लिया है इस ग्रंथ माँ भूर्ज का गंभीर, साधक कैसे भक्ति को धीरे 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 अग्रसर करके साधन की अंतिम स्थिति भाव वहां तक ले जा सकता है, साधारण से भी साधारण में भी साधारण ऐसा मत समझो कि ऐसे साधारण आदमी जो कर्म और ज्ञान में दिखे ऐसे लोगों के लिए नहीं, भक्ति की महिमा समझ करके उसमें प्रवेश करने के लिए जिनकी एकांतिक इच्छा जग गई है उन लोगों के लिए, जो भी देवताओं देवताओं की देवियों की उपासना में है अभी संसार के पदार्थ उनको चाहिए, मुक्ति चाहिए और वैकुंठ की भक्ति चाहिए, उन लोगों के लिए नहीं, वो लोग भी पढ़े तो वो धीरे धीरे आकर्षित होकर के इधर आ जाएंगे, इस चीज को उन्होंने एक श्लोक के ऊपर में इस
माँ ध्रुद्ध का गंभीर को रूप गोस्वामी ने एक श्लोक के ऊपर भक्ति गोस्वामी सिंह एक श्लोक वो श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात्र अनाकृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम एक श्लोक इसी पर आधारित कर करके उनके जितने भी ग्रंथ हैं और भक्ति राज्य इसी श्लोक के ऊपर में खड़ा एक श्लोक समस्त भक्ति राज्य और इसमें साधारण आदमी हम लोगों से लेकर के और राधा जी का भाव भी इसी में आ गया है सब कुछ इसमें आ गया बीज में जैसे अंकुर से लेकर के फल पके हुए फल तक का सभी उसमें है ऐसे ही सब कुछ तो हम लोग रूप गोस्वामी के अनुगत्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के माधुर्य का दंडनीय योग रहे चार पांच दिन धारावाहिक भाव से आठ घंटा हो पंद्रह मिनट हो बीस मिनट एक घंटा जैसा होगा इस पर हम इसकी व्याख्या करें शुद्ध भक्ति जानने वालों के लिए और करने के लिए बहुत ही ये सहज उपयोगी और सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए अन्याभिलाषिता बहुत बार व्याख्या हमने की है पुस्तकों के रूप में भी व्याख्या के रूप में हमने की है साधारण रूप में समझिए कृष्ण का अनुशीलन तन मन वचन सब प्रकार की एनर्जी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को प्रसन्न मन प्रीति के लिए ये तीनों चीजों की जो चेष्टाएं हैं आप करेंगे तो इसको कहते हैं भक्ति तन से मन से वचन से भाव से जितनी सारी चेष्टाएं हैं उनको बल्य धारावत अविच्छिन्न गति से तार कहीं टूटे नहीं और वैष्णव के अनुगत्य में जो इसके पारखी हैं तत्व को जानना उनकी अनुगत्य में कृष्ण को केवल प्रीत करने के लिए उनको केवल प्रसन्न करने के लिए हमारी ये जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को भक्ति का किंतु भक्ति करने पर भी जब तक कि कर्म कोई अभिलाषा रहेगी संसारी कर्म वासना ये कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं तब तो वो भक्ति होगी और नहीं तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए और उससे हम संसारिक चीज चाहते हैं अपनी चीज चाहते हैं कोई विशेष तो ये भक्ति ये सगुण भक्ति हो गई शुद्ध भक्ति कोई भक्ति किंतु उत्तम भक्ति नहीं होगी इसलिए उत्तम शब्द भी नहीं कहा केवल कहा कि कृष्ण का अनुशीलन है यही भक्ति है इसलिए कृष्ण के लिए कर रहे हैं किंतु फल भी कृष्ण को मिले और हम दूसरा कुछ नहीं चाहते ऐसा उसमें होना चाहिए कोई भी अभिलाषा संसारी परमार्थिक साथ ही साथ में कर्म ज्ञान योग तपस्या ज्योतिष शास्त्र कवच तवच ये सब जो धारण इत्यादि ये सब जितने भी चीजें हैं इनका सहारा भक्ति में नहीं चाहिए भक्ति स्वतंत्र है कर्म से हम सब कर्म करेंगे फिर उसे चित्त शुद्ध हो जाएगा फिर हम उसको भक्ति में लगाएंगे और इन चीजों के बिना हम सहायता से भक्ति नहीं होगी तो भक्ति का भक्ति स्वतंत्र अवलंबना भक्ति स्वतंत्र किंतु बिना भक्ति के और कोई काम नहीं होगा कोई भी काम नहीं होगा भक्ति जरूर करनी पड़ेगी कम्युनिस्ट लोग कहेंगे कि हम लोग तो भगवान मानते नहीं है भक्ति का प्रश्न क्या है तुम अपने अफसरों को जो प्रसन्न करने की ये जो कर रहे हो अपने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को ये क्या चीज है प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़ कर करके दो रुपया में हम चावल दिला देंगे और उसके लिए प्रधानमंत्री की जरूरत जैसे आप हमारा ये अर्थ की व्यवस्था ऐसा कम करते हैं जैसे वो प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्न करना का यही भक्ति की भावना है। वो बिना भक्ति के कोई भी कर्म ज्ञान योग तपस्या कोई भी फल नहीं होगा। भक्ति किसमें जरूरत है, किंतु भक्ति कुछ नहीं करें और केवल भगवान का नाम करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, प्रभु की प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें, अर्चन करें, तो ये सब कुछ किसी भक्ति के द्वारा ही भक्ति है और किसी की जरूरत नहीं, किसी की सहारा की जरूरत नहीं। किंतु बिना भक्ति के और कोई चीज फल देने में समर्थ नहीं। इसलिए भक्ति शक्ति और इसमें इस चीज को समझना चाहिए, भक्त से भी अधिक भगवान से भी अधिक प्यारा भगवान की जिससे सेवा होती है उस पर भी नजर रखना पड़ेगा। जैसे कृष्ण ने मक्खन चोरी की और यशोदा मैया ने उनके कान पकड़े, किस लिए? जैसे ने तुम तो ये नष्ट क्यों कर दिया, चोरी क्यों किया? उन्होंने दूध के लिए इनको डांटा फटकारा, गोदी से उतार दिया, कृष्ण रो रहे हैं। किंतु यशोदा जी किस लिए ऐसा किया? कृष्ण की किरण, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अपने लिए तो उन्होंने नहीं किया, इसलिए इसको भी भक्ति समझा। और दूसरे तरफ में दुर्योधन कृष्ण को सम्मान दे रहा है, यह सम्मान किस लिए दे रहा है? आप हमारे तरफ में मिल जाइए, उनका पक्ष मत लीजिए। तो वो कृष्ण को जो प्रसन्न करने के लिए हर तरह से सजाया है, घर को खाने के लिए पीने के लिए सब व्यवस्था की है, स्वागत के लिए सोने का द्वार बनवा दिया और सब जो चीजें कर रहा है, ये किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करने पर भी वो भक्ति नहीं है ना।
अंतिम उद्देश्य अपने प्रसन्नता, अपने चारण मुस्तु कृष्ण से लड़ रहा है, कृष्ण को आनंद हो रहा है, ये आनंद कृष्ण को हो रहा है क्योंकि भक्ति नहीं है, क्योंकि उनको मारने के लिए कर रहा है। ये चीज को समझना है।
जैसे राधिका जी कहती हैं आप यहाँ से निकल जाइए, सीधी तरह से निकल जाइए, आपसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, कहकर ऐसा है कृष्ण पैया पड़ रही है, ये कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति नहीं, राधिका जी का जो कुछ है वो सब कृष्ण के लिए ही है। अभी नहीं समझने पर भी हम लोग भक्ति में कुछ अग्रसर होने पर इन चीजों को समझते हैं। राधा जी कृष्ण की लादनी शक्ति है, इसलिए जो कुछ भी करती हैं वो कृष्ण के लिए। उनको क्रोध से भी बोलेंगे, बातचीत भी नहीं करेंगी, यहाँ तक कहेंगे जैसे हमारे पैर थक गए हैं, कृष्ण से डायरेक्ट कहेंगी हमारा पैर दबा दो, ये कहां की भक्ति? ये तो भक्ति और उनसे लेना हुआ नहीं, ये सब कुछ। इसलिए इसको भी भक्ति में ही समझो, साधारण लोग नहीं कहीं समझेंगे इन चीज को। इसलिए यहां तक के भाव सब उत्तम भक्ति है, नीचे से आरंभ किया, कहां से? ज्ञान कर्म नहीं रहा, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और जो अनुभवी जो वैष्णव है उनके अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लौकिक दृष्टि से वो झूठ बात भी है, कृष्ण कहते हैं ठीक है। जैसे बसदेव जी ने कहा कि हमको लड़की गई, हमको बेटा नहीं हुआ और दे आए गोकुल में कृष्ण को, और युधिष्ठिर महाराज ने उनकी बात नहीं मानी तो ये भक्ति का विपरीत हो गया। इसलिए भक्ति के ये सब विचार, तो इसके साधन करने के लिए रूप गोस्वामी ने एक श्लोक दिया, आदौ श्रद्धा अथ साधु श्रद्धा अथ भजन क्रिया अथो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि तथा शक्ति ततो भाव ततो भाव दंचती साधका नाम अयम कम
अयम प्रेम प्रादुर्भाव हवित कम।
ये भक्ति के कथा श्रद्धा पहले, इसके बाद में साधु संघ, पहले हुआ साधु संघ,
साधु संघ के प्रभाव से श्रद्धा संस्कार आई, अब संस्कार से श्रद्धा आई, श्रद्धा से भजन गुरु जी के पास में पहुंचेगा, गुरुकर्ण होगा, उनके निर्देश में आरंभ किया। वही भगवान की जो डायरेक्ट जो बातें हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासत्यात्म निवेदनम, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के नाम को कीर्तन करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के धाम में जाना, यमुना इत्यादि का तुलसी का आदर करना, और ये सब भक्ति की, ये सब उत्तमा भक्ति को लक्ष्य करके, किंतु अभी आरंभ कर, अभी उत्तमा भक्ति हुई नहीं। तो ये श्रद्धा से लेकर के और प्रेम के आविर्भाव तक, प्रेम के उदित होने तक, ये सब 10 स्तर है, 10 स्तर है। इसके साधन करने से हम क्रमशः बढ़ते 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 प्रेम तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम होने के बाद में और की स्थितियां भक्ति के स्वामी सिंधु में और सब चीजों को दी गई है, कैसे कैसे भक्त होते हैं, क्या होता है, ये सब को दिया। यहाँ पर केवल एक श्लोक को हम लोग ये ले रहे हैं, आदौ श्रद्धा बने, पहले ये श्रद्धा है, भक्ति एक है, भक्ति का बीज क्या है, श्रद्धा तो उसमें आई, किंतु बीज क्या है। साधारण लोग समझते हैं कि श्रद्धा ही भक्ति लता का बीज है, श्रद्धा का बीज है, भक्ति का बीज है किसी के हृदय में, या गेहूं या कोई भी चीज बोते हैं, बीज देते हैं। अब हम विचार करते हैं कि भक्ति जो एक लता के समान है, इसका बीज क्या है। कृष्ण की सेवा करने की हृदय में वासना का जगना ही यही श्रद्धा का बीज है,
श्रद्धा का बीज है।
कृष्ण की सेवा की वासना हृदय में जगाने का, ये जगाने की जो भावना है, कृष्ण की सेवा की वासना, कृष्ण की हम सेवा करेंगे, ये सेवा की जो वासना है यही भक्ति का बीज है। ये यदि जन्म गया ये कृष्ण की हम सेवा करेंगे, कृष्ण ही सर्वोपरि है, इनसे बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है विश्व ब्रह्मांड में, यही सबके मूल है, इस चीज को जान करके उनकी सेवा की वासना हृदय में जग जाना, यही भक्ति का बीज है। ये नहीं रह करके जब कृष्ण की सेवा करेंगे ये न जगे, अभी भक्ति की अभी वो बीज नहीं जगना, ये बीज पहले आता है, क्या, मैं कृष्ण की सेवा करूं, गुरु यही चीज देता है, तुम कृष्ण की सेवा करो, तुम राधा कृष्ण की सेवा करो, उसमें लोग उत्पन्न करा देता है, उसके हृदय में बैठा देता है कि इसके द्वारा तुम्हारा जीवन लोक परलोक सब कुछ इसके द्वारा बन जाएगा, यह है बीज। ये बीज होने के बाद में कैसे वो बीज बढ़ेगा, कैसे अंकुरित होगा, ये सब साधन है, समझिए ना। भक्ति लता का बीज क्या है, कृष्ण की सेवा करने की वासना की कामना हृदय में। लड़का पढ़ता है कब टेस्ट से,
आनंद होता है,
जब वो समझता है कि इसके द्वारा हम जीवन में उत्कर्ष लाभ करेंगे, तब तो किसी भी चीज के लिए वासना होती है काम में, ये वासना ही पीछे से मूर्ति धारण करके लौकिक दृष्टि से गांधी जी ने कामना की ये भारत को हम स्वतंत्र करें, इससे देश की राष्ट्र की सेवा होगी, उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने इसके लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया, लाखों लोगों को कलेक्शन कर दिए, लाखों लोग उनके पीछे, किंतु स्वतंत्र हुआ भारत ना परतंत्र हुआ, ये तो दूसरी बात, क्या हुआ। तब ये वासना है, ये भक्ति का बीज है, जब ये वासना जगी, अब ये कैसे बढ़े, कृष्ण की सेवा कैसे पाऊंगा,
कैसे पाऊंगी, इसके लिए अब हृदय से चेष्टा करने की आवश्यकता महसूस है। हमको इसको इस चीज की जरूरत है, जब जरूरत है तो इसके लिए हमको चेष्टा करना पड़ेगा। कहां ये चीज मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमको ठंड लग रही है, क्या जरूरत है ठंड को दूर करने के लिए, क्या जरूरत क्या है, कुछ पैसा नहीं है तो केवल आग जला लो। गरीब लोग क्या करते हैं देश में, आग जला करके आगे पीछे जला लिया, बैठ गया किसी तरह से जीवन नहीं मिला, पत्ते जला लिया। जो धनी आदमी होंगे क्या करेंगे, इधर तो लगेगा पहले कपड़े टपड़े गर्म ये सब, और इसके बाद हीटर भी लग जाएगा, सब प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले तो ये तो जरूरत है कि हमको ठंड लग रही है, हमको इसके लिए बचने की जरूरत है। इसी तरह से हर काम में कामना या वासना जो होती है, हम संसार में जो बधे हैं ये मन की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वासना जगी है ना, उस वासना से कृष्ण को भूल और इस परिस्थिति में आया। इसलिए वासना के ऊपर भी सब कुछ निर्भर है। यदि कृष्ण की सेवा करने की कामना वासना हमारे हृदय में थोड़ी भी आ गई, समझो कि हमारा परम कल्याण है, परम कल्याण। अब इसी चीज को यहाँ पर ये बतला रहे हैं, महाप्रभु जी की कृपा की वंदना कर रहे हैं। बिना भगवान के कृपा से, भगवान की ये वृत्ति, सेवा की ये वृत्ति है, ये नहीं आ सकती, ये जड़ चीज नहीं है। दो चीजों, दो जगहों में ये चीज मिलती है, एक मिलेगी भगवान के हृदय में और एक मिलेगी जो भगवान की सेवा करते हैं उनके हृदय में। भक्ति नहीं पर, या तो भगवान कृपा करें, या वैसा कोई भक्त हो पहुंचा हुआ जिसके अंदर में ये वृत्ति संपूर्ण रूप में उज्जवल रूप में है, वहां से हमको मिल सकती है। जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब अवतारों में कृष्ण का अवतार सबसे श्रेष्ठ माना गया है, उनको अवतारी कहा गया है, वो मूल है, और बाकी जितने हैं उनके अंश हैं, कला हैं, विकला हैं, कुछ तो ये सब चीज किस चीज पर निर्धारित किया गया है, ये कृष्ण ही भगवान है, किस चीज पर
भगवान के
साथ। दो चीज पर निर्भर होता है, एक होता है शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य। संसार विश्व ब्रह्मांड में जिनका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, जिसे जिसका किसी का बड़ा ऐश्वर्य और शक्ति नहीं है,
वो भगवान
है,
वो भगवान है। जिसमें और में वैसा धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं, जहां से सब निकलता है, जिसको और किसी से नहीं लेना पड़ता, सूर्य की रश्मि अपनी नहीं, आग में अपनी शक्ति नहीं, ये सब दूसरे के ऊपर में निर्भर करते हैं। इंद्र ब्रह्मा शंकर ये स्वतंत्र इस ये नहीं है, शक्ति नहीं देने वाले कुछ ये नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है। राम है, राम को भी कुछ लगाम है, राम राम के ऊपर
मर्यादा का लगाम,
मर्यादा का लगाम है, उसे आगे नहीं बढ़ सकता। ऐश्वर्य की दृष्टि से जब विचार करते हैं, सबसे बड़ा ऐश्वर्य किसका है, आज तक यही था ये नारायण है, नारायण से बढ़ करके और किसी को ऐश्वर्य, सर्वशक्तिमान है और सबको वो सब कुछ दे सकते हैं, उनको किसी से लेना नहीं। अभी तक महाप्रभु जी के पहले यही प्रचलित था, जिसको जितना एपुलेंट बेसी है, ऐश्वर्य बेसी है, शक्ति अधिक है, वो भगवान है। किंतु श्रीमद् भागवत और इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जब आए, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने कहा जे नहीं, भगवत्ता का आकार ऐश्वर्य नहीं, प्रेम है,
माधुरी
ये प्रेम जो है माधुरी।